نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ایک خلاصہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے. چونکہ آج کل ہم توحید، ایمان اور شرک ان تینوں باتوں پہ بات کر رہے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کہ جس بندے کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، توحید آ جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات کیا آتے ہیں. یہ آیت ایمان کی مثال دینے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے ایمان کو تشبیہ دی ہے. تصور میں لائیں، درخت میں کیا ہوتی ہے؟ جڑ، تنا، شاخیں، پتے، پھر پھل آتا ہے نا. دین اسلام کا سرسبز درخت بھی انہی چیزوں سے مل کے بنتا ہے. جڑ کیا ہے؟ ایمان باللہ، یؤمنون بالغیب کی ساری چیزیں جڑ میں آتی ہیں. جتنا انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں پختہ ہوتا ہے، عقیدہ آخرت پختہ ہوتا ہے، اپنی موت کا یقین ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے وعدوں پہ یقین آنے لگتا ہے، جتنا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیروں پہ رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان بڑھتا ہے، اتنا ہی اسلام کا درخت مضبوط اگتا ہے. کسی کے بھی اسلام میں کوئی کمی دیکھے نا، چاہے وہ کمی اس کے قول میں ہو یا فعل میں ہو یا اس کے مالی معاملات میں ہو یا اللہ کے کلام سے محبت میں نہ ہو، تو اس کی وجہ جڑ میں ڈھونڈنی ہے. عقیدہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ جو بندے کو استقامت دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اسلام کی طرف آئے، بہت آزمائے گئے، اور ان آزمائے جانے والوں میں پہلا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب مسلمان ہوئے تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی بنیاد پہ آپ کو مکہ کی گرمیوں میں پتھریلی زمین پر لٹاتا اور اوپر پتھر رکھتا اور کہتا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس حالت میں بھی بلال کی زبان پہ جو لفظ تھے وہ کیا تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. مارتے مارتے تھک جاتا، لیکن بلال کی زبان سے عہد کے سوا کچھ اور نہ نکلتا. ایک دن آپ کی ماں کو ہی سفارشی بنا کے لے آیا. وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا تھا. کہا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. آپ سوچئے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بیٹے کو تپتی دھوپ میں پتھریلی زمین پہ پتھروں کے نیچے لیٹا ہوا دیکھا ہوگا. کہنے لگی کہ بیٹا، کیوں مار کھاتے ہو؟ اللہ کو تیرے دل کی حالت پتا ہے، جو یہ کہتا ہے بول دے. تو اس بات پہ بلال مسکرائے، کہنے لگے کہ آج مجھے پتا چلا کہ امیہ ہار گیا اور میں جیت گیا. کہا کیسے؟ کہا اگر یہ ہارتا نہ نا تو آج میری ماں کو میرے سامنے سفارشی بنا کے پیش نہ کرتا. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. इस वक्त इस मौजू की निस्बत से सोचने की बात क्या है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने बिलाल को मजबूती दी, वो कौन सी चीज़ थी जिसने पत्थरों पे भी बेमज़ा ना होने दिया। वो अकीदे की पुख्तगी थी, वो तौहीद की मार्फत थी, वो अल्लाह के एक होने का यकीन था। ईमान कमज़ोर होता है ना तो इंसान छोटी छोटी बातों पे इस्लाम से पीछे खिसकने लगता है, हत्ता के किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की बदली हुई निगाहें भी इंसान को इस्लाम से फेरने के लिए काफ़ी हैं कि नहीं, मैं इस रूप में बाहर नहीं जा सकती, लोग मुझे देख के हंसेंगे, लोगों को पता चलेगा मैं मुसलमान हूँ। और वो जगह भी जहाँ रिलीजन की पूरी आज़ादी हो, वहाँ भी इंसान अपनी अंदर की गिरहों की वजह से अपने इस्लाम और ईमान का इजहार नहीं करता। तो अकीदे तौहीद बंदे को मजबूती देता है, जड़ मजबूत होती है। कोई दरख्त कितना ऊंचा जाएगा, इसका दारोमदार होता है कि उसकी जड़ें जमीन के अंदर कितनी हैं। हम सब बोन मुस्लिम्स हैं, मेरा ख्याल है कि हम, मेरे गुमान के मुताबिक इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मुस्लिम पैदा हुए। पैदा तो सभी मुसलमान होते हैं लेकिन माँ बाप भी मुसलमान थे। क्या आज हमारे ईमान के अंदर इतनी गर्मी है जो हमें मुश्किलात के वक्त जमा सके? खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन जिस तेज़ी से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, कल कोई हमें गन पॉइंट पे कह दे कि या इस्लाम छोड़ो या फिर आजमाइशें सहने के लिए तैयार हो जाओ, हम किस जहन के हामिल हैं? हम तो अपनी गाड़ियों में अपनी मसवी किताब तक नहीं रखते कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ मसला हुआ, कोई चेकिंग हो गई तो पता ना चल जाए कि हम मुसलमान हैं। हम तो अपनी ज़ात पर एक छोटी सी निशानी भी इस्लाम की नहीं रखना चाहते कि लोग फिर हमसे स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे तो हुलिये बदलने लगते, हमारे तो तौर तरीके बदलने लगते। कमी कहाँ है? अकीदे में कमी है। हबा बिन अरद, कबीला खुजाया की एक औरत उम्मे नीमार के गुलाम थे। जब मुसलमान हुए, आग जलाती, अंगारे यानी फ्लेम जो शोले होते हैं, कोल कह लें, उसके ऊपर लिटा देती और ऊपर पत्थर रख देती कि अपनी जगह से उठ ना सके। लेकिन जो शख्स अपनी बात से नहीं हिले, अपनी कमीज उठा के अल्लाह के नबी को दिखाया करते थे कि जहाँ कोयलों के जलने की वजह से सुराख हो चुके थे, डम्प्स गैप्स पड़ चुके थे, इसी तरह इनके जिस्म पर इतने निशान थे कि जब इस्लाम कबूल करने के बाद एक दफ़ा सहाबा कराम के साथ बैठे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा कि खबाब, इस्लाम से पहले की बातें सुनाओ। तो कहा क्या सुनाऊँ? बस कमीज़ जिस्म से उठा दी और आपकी बैक पे जितने निशान और घड़े थे इसको देख के उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा इंसान भी आंसुओं से रोने लगा। और एक सहाबी थे, वो कहते हैं कि इतने गहरे जख्म पड़ गए जिस्म में कि बच्चे उनके अंदर उंगलियां डाल के खेला करते थे। कौन सी चीज़ थी जिसने नहीं रोका? अकीदे की पुख्तगी। हम कहने वाले और सुनने वाले अपने ईमान का जायजा लें, हम कहाँ खड़े हैं? आप कहेंगे ये तो मर्दों की बातें हैं, मर्दों में तो हौसले बहुत होते हैं। तो एक औरत बीबी सुमैया बिनते खब्बात, अबू जहल की लौंडी थी, ज़ईफुल उम्र थी, बूढ़ी खातून थी, लोहे की ज़िरह पहनाता यानी लोहे का लिबास एक होता है वो पहनाता, और धूप में चिलचिलाती हुई धूप पर लिटा दिया जाता और कहा जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार करो। लेकिन वो नहीं हटी, इनका पूरा घराना आजमाया गया। इनके शौहर यासिर थे, बेटा अम्मार था। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो इस ख़ानदान को इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पे आजमाइशों में मुब्तला देखा तो आपने कहा सब्रना अली यासिर, ऐ यासिर के घराने वालों सब्र करो, इन्नी मौईदुकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। सब तो शायद अलग अलग जाएंगे जन्नत में, तुम पूरे घराने वाले एक साथ जन्नत में जाओगे। अकीदा इंसान की जिंदगी पे बड़े गहरे असरात देता है। इसी का जिक्र फिर सूरत इब्राहिम की अगली आयत में भी आता है कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबिति फिल हयाति फिद दुनिया व फिल आखिरा। ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला एक कौले साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों जगह सुबात अता फरमाता है। तो लिहाजा अकीदा इंसान को पुख्तगी देता है। ये है पहला असर, इस्तकामत। दूसरा असर जो अकीदा तौहीद इंसान की शख्सियत पे डालता है वो क्या है कि इंसान की इज्जत नफ्स और खुदी का तहफ्फुज़ होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल आता है। जब इंसान दर दर पे झुकता है ना, तो वो अपनी नज़रों में जलील हो जाता है। मसलन हम में से हर एक अपनी ज़रूरियात के लिए किसी एक मर्द पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चियां हैं तो हो सकता है कि आप अपना पॉकेट मनी अपने वालिद से लेती होंगी। अगर आप खवातीन हैं तो आप अपने पॉकेट मनी अपने शोहर से लेती होंगी। कोई बूढ़ी खातून है तो वो अपने जवान बेटे से लेती होंगी। ऐसे ही है ना, आप बताइए। एक से मांगने में खैर है, या बिन मांगे वो आपको दे दे क्योंकि उसको पता है कि आपकी ज़रूरत है, ये बात दुरुस्त है, या हर आने जाने वाले से मांगना? पहले में और दूसरे में क्या फ़र्क है? पहले में आपकी खुदी और इज्जत नफ्स कायम रही, दूसरे में आप जलील हो गए। बैगर्स को देख ले, छिझक ही खत्म हो जाती है। हर एक के आगे हाथ है, तू भी दे दे, कोई एक सिक्का भी डाल दे तो उसको लेके तैयार है। तौहीद बंदे की इज्जत को महफूज करवाती है। आपके अंदर खुदी आती है, आपको अना आती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी आला तकवीम में पैदा किया। लकद खलक नल इंसान फी अहसनी तकवीम। हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम में पैदा किया, लेकिन सुम्मा रदद ना हुआ असफल साफिलीन। फिर वो नीचों से नीचे ही होता गया। इंसान असफल साफिलीन कब होता है? जब एक रब का दर छोड़ के कई घरों के अंदर चल पड़ता है। आप माएँ हैं, आपको अपना बच्चा कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी दोस्तों से भी मांगे, आपके घर में आने वाले मेहमानों से भी पैसे मांगे। कोई बच्चा अगर माँ बाप के सामने किसी और से मांग भी ले तो उस मेहमान के जाने के बाद माँ कितना नाराज़ होती है। जब इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगता है ना, तो नतीजा क्या होता है कि वो अपनी अना को मजरूह करता है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी का सिर रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फिशा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस करें। इसी को एक शेर में भी कहा जाता है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है हज़ार सजदों से आदमी को निजात। देखिए, एक का बनने में बड़ी लज्जत है। दर दर का जो बंदा भिखारी होता है ना, हमारे यहाँ तो एक मुहावरा भी बड़ा गलत से लफ्ज़ों में बोला जाता है ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, या एक लफ्ज़ बोलते हैं दर दर का भिखारी। तो एक दर पे लग जाएंगे ना तो वो खुद ही हमें देगा। मसलन आप देखिए कि कोई काम करती है ना खवातीन, हमारे मुल्कों में आप देखिए कुछ खवातीन होती हैं वो फुल टाइम मेड्स होती हैं, बस एक ही के पास रहती हैं और उसी को पता है कि मैंने इनको सब कुछ देना है, खाना भी देना है, रोटी भी देनी है और महीने के खर्चे देने हैं। नतीजा क्या होता है कि जब ईद आती है तो घर वाली खातून को फिक्र होता है कि इसका ईद का जोड़ा बनाना है, अब रमज़ान आया तो इसको राशन पानी देना है। उसकी सारी जिम्मेदारियां एक मालकन ही ले लेती है, और इसके बरक्स वो बेचारी खवातीन जो सारा दिन एक घर से निकल दूसरे, दूसरे से निकल तीसरे, उसके बर्तन धो, उसके कपड़े धो, उसकी सफाई कर, तो उनका हाल क्या होता है? एक जगह जाएंगी, भूख लगी भी है तो मालकन कहेगी कोई बात नहीं ना, अगले घर जाएगी वहां से खा लेगी, मैं क्यों दूँ, अब रोज मैं ही दूँ, चले चल पड़ी। वहां गई तो उसने सोचा पिछले घर से खा लिया होगा, इसको मैं क्यों पूछूं। और बाज़ दफ़ा बेचारियां सारा दिन काम कर करके भूखी वापस आती हैं। अपनी जिंदगी में इस असूल को रखना है कि अपनी खुदी को मजरूह नहीं करना। तीसरी चीज जो इंसान की शख्सियत में अल्लाह को एक मानने के बाद आती है वो क्या है? मसावात, बराबरी। यानी जब सारे एक को मानेंगे ना तो सबके बीच में इत्तेहाद होगा, और जब सारे मुख्तलिफ को मानेंगे तो इत्तेहाद टूट जाएगा ना। सिंपल आपके हालात पे मिसाल देती हूँ कि हम इस वक्त इस रूम में बैठे हैं, आप सब सुन रहे हैं और मैं अकेली बोल रही हूँ, आप ज़्यादा तसल्ली से सुन रहे हैं ना। अभी से कुछ देर पहले जब आप ग्रुप्स में थे तो तीन चार ग्रुप लीडर्स हेल्प कर रहे थे ना आपकी, या इससे ज़्यादा। तो उस वक्त अगर सभी ऊंची आवाज़ में बोलें तो आप किसी की सुन सकेंगे? नहीं। हालांकि सब काम एक ही कर रहे थे, लेकिन चार पांच लोगों को एक वक्त में सुनना और एक को सुनना बहुत फ़र्क होता है। हम जब अल्लाह ताला ही को रब मानते हैं ना तो हमारे आपस के इख्तलाफात मिट जाते हैं। बस आप देखिए कि हम लोग परदेश में रहते हैं ना, इस वक्त इस यहाँ इस मस्जिद या इस जगह इस हॉल में हमें किस चीज़ ने जोड़ा? हमारे अकीदे ने जोड़ा। जुमे की नमाज में जो हजारों लोग जमा हो जाते हैं वो अकीदे की बुनियाद पे जमा होते हैं, ईद की नमाज में जो हजारों के मजमे होते हैं वो अकीदे की बुनियाद पे हैं, और इसका सबसे बड़ा मजहर तो हज और उमरा, अल्लाह का घर। वहाँ जो हर साल लाखों लोग जाते हैं वो तौहीद की बुनियाद पे हैं। इस एक अकीदे ने सबको जोड़ दिया। इसी तरह दूसरे नज़रियात, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई ज्यूइज्म, कोई बुद्धाइज्म, कोई हिंदुइज्म, मुख्तलिफ दीन है ना, ये छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि वो फोकल पॉइंट टूट गया। जब हम अल्लाह को एक मानते हैं ना तो उसके बाद फिर हमें किसी दूसरे के आगे उस तरीके से झुकने और उससे इख्तलाफ की ज़रूरत ही नहीं रहती। तौहीद वो नेमत है जिस पे आप इस दुनिया में यूनिवर्सल इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं, अलायंस, राबते। हम चाहते हैं पूरी दुनिया एक हो जाए, कहाँ होंगे? बुद्धास कहेंगे बुद्धा को मान लो, हम ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। वो कहेंगे अच्छा बुद्धा को मान लो, तो फिर हम क्यों बुद्धा को माने? ईसाई कहेंगे तुम जीसस को गॉड मान लो, तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहूद कहेंगे तुम उजैर को खुदा का बेटा मान लो, तो हम साथ हैं। ये सब इंसान है ना, और आप मुसलमानों को ही देख लें, वो ही नहीं एक जगह जमेंगे। वो कहेंगे तुम हमारे इमाम को मान लो, तो हम सब साथ हैं, तुम अपने तुम अपने तुम अपने। ऐसे वक्तों में एक ही ज़ात ऐसी है ना जिसको सब मानते हैं, वो अल्लाह की ज़ात है। जो एक रब को मानेंगे ना, ये ऐसे जैसे न्यूक्लियस, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, एक न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द फिर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो इसलाह कर सकते हैं, और उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। आप न्यूक्लियस मोड़ देना तो एक्सल टूट जाएगा और वो सारे आपस में टकरा जाएंगे। तो तौहीद कायनात को एक जगह जोड़ने का जरिया बनती है। चौथी चीज जो अल्लाह को एक मानने के बाद बंदे के अंदर आती है वो रूहानी सुकून है। शिर्क इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया में इतनी निशानियां हैं अल्लाह को मानने की कि जब इंसान इसको मान के एक रब का हो जाता है ना तो उसके अंदर एक गहरा सुकून आता है, मुतमईन, इत्मीनान। इसके बरक्स वो लोग जो दर दर पे जाते हैं ना वो बेसकून रहते हैं। सूरत रूम की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, फ़ाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। बस यकसू होकर अपना रुख दीन इस्लाम की सिमत में जमा दो और कायम हो जाओ उस फितरत तौहीद पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने से पहले वादे अलस्त की सूरत में हम सबसे ये वादा लिया है कि दुनिया में जाओगे तो किसको मानोगे, और हम सब मिल के इस बात का इकरार कर चुके हैं कि भला क्यों नहीं। अल्लाह ने पूछा था अलस्त तू भी रब्बिकुम, हम कहते हैं जी अल्लाह क्यों नहीं। सूरत आराफ में ये आयत मिलती है। तो लिहाजा जब हम अल्लाह को एक मान जाते हैं ना तो हम मुतमईन होके बैठ जाते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी माँ और बच्चे की। माँ की गोद में आते ही बच्चे की क्या कैफियत होती है, उसकी हिचकी बंद हो जाती है ना, और ऐसे फिर चिपक के सोता है कि उसको लगता है कि मैं बड़े महफूज हाथों में आ गया हूँ। बिलफर्ज किसी की माँ वहाँ ना हो, माएँ चली जाती हैं इधर उधर गई, पीछे से आप बताइए क्या फूफी दादी नानी खाला क्या बच्चे को चुटकियाँ काटती हैं? जितने प्यार से वो हाथ लगाती होंगी माँ भी नहीं लगाती, लेकिन बच्चे को माँ क्यों चाहिए? ये है फितरत। जिस तरह माँ की गोद में इंसान मुतमईन हो जाता है ना, इस तरह अल्लाह ताला की जात को इंसान एक मान के मुतमईन हो जाता है। फिर इंसान इधर उधर नहीं भटकता, फिर उसकी ज़िंदगी में वाकई ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि जो उसको अल्लाह ताला की तरफ झुका देती हैं। तो लिहाजा तौहीद पे आते ही इंसान मुतमईन हो जाता है, यकसू हो जाता है, उसकी नज़रें इधर उधर से हट जाती हैं। मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन बिलफर्ज जब कोई लड़की या लड़का जवान होता है ना, तो जब तक उसकी शादी नहीं होती वो इधर उधर नज़रें लगाए रखता है, हर तरफ नज़रें उठती हैं, शायद इधर शायद उधर। लेकिन जब मंगनी निकाह की शादी की सूरत में एक नुक्ता मिल गया तो इंसान को इत्मीनान मिल जाता है। अल्लाह करे कि हम सब तौहीद पे जम जाएं और अल्लाह ताला हमें इसी पे कायम रखे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।